एकेत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकेत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिकी समाज और नस्ल के मुद्दे पर सोच को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं W.E.B. Du Bois की कालजयी कृति द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक्स की। ये किताब 1903 में आई थी, सोचिए एक सदी से भी ज्यादा पहले। लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें उठाए गए सवाल, वो मुद्दे आज भी बहुत गहरे लगते हैं, है ना?
सही कहा। और ये सिर्फ अमेरिका के अश्वेत लोगों के इतिहास या समाजशास्त्र की बात नहीं है। ये किताब पहचान, विभाजन, अवसर की असमानता और किसी समाज में बाहरी होने का जो एहसास होता है, उन जैसे सार्वभौमिक मुद्दों को छूती है।
हाँ, ये समझने की कोशिश है कि जब समाज आपको आपकी इंसानियत से कमतर आंकता है तो उसका आत्मा पे क्या असर होता है।
तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो जरूरी विचार हैं उन्हें आज के संदर्भ में थोड़ा समझें।
और इस गहरी पड़ताल को समझने के लिए मुझे लगता है पहले लेखक को जानना जरूरी है। W.E.B. Du Bois कोई मतलब आम अकादमिक नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, वो तो एक असाधारण शख्सियत थे, समाजशास्त्री, इतिहासकार, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और भी बहुत कुछ। सोचिए जरा, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से PhD करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकन थे उस जमाने में। ये तो अपने आप में क्रांति जैसा रहा होगा।
हाँ, और उनकी शिक्षा सिर्फ हार्वर्ड तक ही नहीं थी, फिस्क यूनिवर्सिटी, बर्लिन विश्वविद्यालय, मतलब उन्होंने दुनिया के बेहतरीन दिमागों से सीखा था। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो सिर्फ उनकी डिग्रियां नहीं थी।
आप सही कह रही हैं, उनके पास वो अकादमिक ज्ञान की गहराई तो थी ही, जाहिर है, लेकिन साथ ही वो उस अनुभव को जी रहे थे जिसके बारे में लिख रहे थे।
वो अश्वेत अमरीकी होने के रोजमर्रा के संघर्षों को, अपमानों को, उम्मीदों को फर्स्ट हैंड जानते थे।
ये जो दोहरा दृष्टिकोण था, एक विद्वान का और एक, कह सकते हैं, पीड़ित समुदाय के सदस्य का, यही उनकी लेखनी को इतनी ताकत देता है। वो सिर्फ बाहर से विश्लेषण नहीं कर रहे थे, वो अंदर की आवाज बन रहे थे।
हाँ, उनकी पहली बड़ी किताब थी द फिलाडेल्फिया नीग्रो, 1899 में आई थी। उसने उन्हें एक गंभीर समाजशास्त्री के तौर पर स्थापित कर दिया था। लेकिन द सोल्स ऑफ ब्लैक फॉक में उनकी आवाज ज्यादा निजी है, ज्यादा भावनात्मक है और कहीं ज्यादा असरदार है।
बिल्कुल, वो जटिल सामाजिक सच्चाइयों को ऐसी भाषा में पिरोते हैं जो सीधे दिल को छूती है। ये सिर्फ डेटा का विश्लेषण नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है।
तो चलिए अब किताब के अंदर झांकते हैं। द सोल्स ऑफ ब्लैक फोक असल में 14 निबंधों का एक संग्रह है।
हाँ, और ये 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में अमेरिका में अश्वेत जीवन की एक तस्वीर पेश करती है।
और ये वो दौर था जब गृह युद्ध के बाद वो जो बराबरी का सपना था वो टूट चुका था, पुनर्निर्माण काल खत्म हो गया था और दक्षिण में जिम क्रो कानून लागू थे।
ये जिम क्रो कानून, ये क्या थे असल में, थोड़ा और बताएं इसके बारे में।
हाँ देखिए, ये वो कानून थे जो अश्वेत और श्वेत अमेरिकियों के बीच जीवन के लगभग हर पहलू में कानूनी तौर पर अलगाव थोपते थे। मतलब स्कूलों से लेकर बसों, रेस्टोरों, यहां तक कि पानी के नलों तक में हर जगह अलगाव। ये नस्ली भेदभाव को संस्थागत रूप देने का, मतलब सिस्टम में डालने का तरीका था।
कितना भयानक माहौल रहा होगा, और इसी माहौल में Du Bois लिख रहे थे।
बिल्कुल, और इसी निराशाजनक माहौल में Du Bois दो बेहद शक्तिशाली और यादगार विचार पेश करते हैं। ऐसे विचार जिन्होंने नस्ल पर होने वाली बहसों को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला है द वेल, यानी पर्दा।
हाँ, पर्दा, ये एक रूपक है ना, मेटाफर।
हाँ, Du Bois कहते हैं कि श्वेत और अश्वेत दुनिया के बीच एक अदृश्य पर्दा है। ये पर्दा श्वेत लोगों को अश्वेत लोगों की पूरी इंसानियत, उनके सपनों, उनके दुखों को देखने से रोकता है।
और इसी पर्दे के कारण अश्वेत लोग हमेशा खुद को अपनी ही जमीन पर बाहरी, अदर या अलग थलग महसूस करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार है।
बिल्कुल, और दूसरा विचार जो शायद इससे भी ज्यादा गहरा है वो है डबल कॉन्शियसनेस, यानी दोहरी चेतना।
ये सुन के ही लगता है कि इसमें कितना आंतरिक संघर्ष होगा, दोहरी चेतना।
हाँ, Du Bois का सबसे बड़ा धमाका शायद यही था। ये सिर्फ भेदभाव की बात नहीं थी, ये इस बात का खुलासा था कि कैसे नस्लवाद आपकी आत्मा के अंदर घुसकर आपको अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता है।
अपने ही खिलाफ।
हाँ, दोहरी चेतना का मतलब है कि अश्वेत अमेरिकी हमेशा खुद को दो नजरों से देखते हैं, एक जैसे वो खुद हैं और दूसरा जैसे ये नस्लवादी श्वेत समाज उन्हें देखता है।
अच्छा।
और वो नजर अक्सर नफरत या दया की होती है। तो ये एक लगातार चलने वाला अंदरूनी युद्ध है अपनी अमेरिकी पहचान और अपनी अश्वेत पहचान के बीच। Du Bois इसे कहते हैं एक ही अश्वेत शरीर में दो आत्माएं, दो विचार, दो असंगत संघर्ष।
उफ, ये कितनी तकलीफ दे स्थिति होगी। और दिलचस्प बात यह है कि डू बॉय सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोते, वो उस समय के एक और बड़े अश्वेत नेता थे, बुकर टी वॉशिंगटन। उनके विचारों को सीधी चुनौती भी देते हैं।
सही कहा, बुकर टी वॉशिंगटन उस समय बहुत प्रभावशाली थे। उनका नजरिया थोड़ा, कह सकते हैं, समझौतावादी था। उनका जोर था कि अश्वेत लोगों को औद्योगिक शिक्षा और कौशल हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहिए।
और राजनीतिक अधिकारों की मांग?
हाँ, उनका मानना था कि राजनीतिक अधिकारों की मांग को फिलहाल टाल देना चाहिए ताकि श्वेत समाज से टकराव ना हो।
लेकिन डू बॉयज के लिए ये मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि ये तो एक तरह से अपनी इंसानियत से समझौता करना हुआ।
हाँ, वो तर्क देते हैं कि सिर्फ हाथ का हुनर सीखकर आर्थिक तरक्की कर लेना काफी नहीं है। अगर आपके पास वोट देने का अधिकार नहीं, अगर आपको नागरिक के तौर पर बराबर नहीं माना जाता, अगर आपको उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद मिलते हैं।
और यही वो टैलेंटेड टेंथ यानी प्रतिभाशाली दसवें हिस्से का विचार सामने लाते हैं ना?
बिल्कुल। उनका मानना था कि अश्वेत समुदाय को अपने बीच से ऐसे नेता तैयार करने होंगे जो सिर्फ कारीगर ना हों, बल्कि विचारक हों, बुद्धिजीवी हों, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेहतरीन शिक्षा पाएं और फिर पूरे समुदाय को रास्ता दिखाएं। ये उच्च शिक्षा और नेतृत्व पर जोर देना वॉशिंगटन के विचारों से बिल्कुल अलग था।
तो ये तो हुई किताब की मोटी मोटी बातें और उसकी केंद्रीय विचार। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं कुछ खास अध्यायों के जरिए।
जरूर। पहले अध्याय ऑफ आवर स्पिरिचुअल स्ट्राइविंग्स, हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर, से ही डू बॉयज माहौल बना देते हैं।
हाँ, वहीं से शुरुआत होती है। डू बॉयज अपने बचपन का एक किस्सा बताते हैं जब क्लास में वो कार्ड एक्सचेंज कर रहे थे और एक श्वेत लड़की ने उनका कार्ड लेने से इनकार कर दिया।
हाँ, वो कहते हैं उसी पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो अलग हैं, कि उनके और श्वेत दुनिया के बीच वो पर्दा मौजूद है। यहीं वो दोहरी चेतना के बोझ को बयान करते हैं। ये एहसास कि आप हमेशा दूसरों की निगाहों से देखे जा रहे हैं और वो निगाहें अक्सर आपको कमतर आंकती हैं।
ये सिर्फ बाहरी बाधा नहीं, ये आत्मा पर एक लगातार पड़ने वाला बोझ है। ये पढ़कर महसूस होता है कि नस्लवाद सिर्फ नीतियों या कानूनों का मामला नहीं, ये कितना गहरा व्यक्तिगत अनुभव है।
बिल्कुल। फिर आता है अध्याय 3 ऑफ मिस्टर बुकर टी वॉशिंगटन एंड अदर्स। ये शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला अध्याय रहा होगा उस वक्त।
हाँ, लगता तो है।
निश्चित रूप से। यहाँ डू बॉयज बहुत सधे हुए लेकिन तीखे शब्दों में वॉशिंगटन की आलोचना करते हैं। वो वॉशिंगटन के योगदान को स्वीकार करते हैं लेकिन उनके समझौते वाले रास्ते पर सवाल उठाते हैं। डू बॉयज कहते हैं कि नागरिक अधिकार, वोट का अधिकार और उच्च शिक्षा की मांग को छोड़ देना दरअसल अश्वेत समुदाय की प्रगति को सीमित करना है। ये एक तरह से श्वेत वर्चस्व के सामने हथियार डालने जैसा है।
उनका तर्क था कि बिना राजनीतिक शक्ति और सामाजिक बराबरी के आर्थिक तरक्की भी टिकाऊ नहीं हो सकती, उसे कभी भी छीना जा सकता है।
हाँ, और यही वो टैलेंटेड टेंथ की वकालत करते हैं कि समुदाय को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो व्यापक दृष्टि रखते हों, जो सिर्फ उस समय की समस्याओं का हल न ढूंढे बल्कि भविष्य की राह बनाए। ये एक तरह से नेतृत्व की जिम्मेदारी पर जोर था।
और फिर कुछ अध्याय हमें उस दौर की जमीनी हकीकत के और करीब ले जाते हैं, जैसे अध्याय 4 ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस या अध्याय 7 ऑफ द ब्लैक बेल्ट। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये जीवन की कहानियां हैं।
हाँ, अध्याय 4 में डू बॉयज टेनेसी के एक गांव में अपने पढ़ाने के अनुभव को याद करते हैं। वो अपनी एक छात्रा जोजी का जिक्र करते हैं, एक होनहार जिंदा दिल लड़की जिसमें आगे बढ़ने की ललक थी, लेकिन गरीबी, अफसरों की कमी और उस घुटन भरे माहौल ने उसकी जिंदगी को कैसे बेरंग कर दिया।
ये कहानी पढ़कर वाकई लगता है कि कैसे व्यवस्थागत समस्याएं व्यक्तिगत सपनों को कुचल देती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये इंसान हैं जिनकी क्षमताएं बर्बाद हो रही हैं।
और अध्याय 7 में वो दक्षिण के ब्लैक बेल्ट इलाके का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं। ये वो इलाके थे जहां अश्वेत आबादी ज्यादा थी। वो दिखाते हैं कि कैसे गुलामी खत्म होने के बाद भी बटाईदारी, मतलब जमीन मालिक को फसल का बड़ा हिस्सा देने की प्रथा, और कर्ज की गुलामी, डेट प्योनेज, के जरिए अश्वेत किसानों का शोषण जारी था।
कर्ज की गुलामी मतलब
वो एक ऐसे कर्ज के दुष्चक्र में फंसे रहते थे जिसे निकलना लगभग नामुमकिन था। ये गुलामी का ही एक नया, ज्यादा पेचीदा रूप था। ये अध्याय डू बॉयज की रिसर्च और विश्लेषण की गहराई को दिखाते हैं।
इन कहानियों और विश्लेषणों का मकसद शायद यही था कि पढ़ने वाला सिर्फ अमूर्त सिद्धांतों के बारे में न सोचे बल्कि उन व्यवस्थागत समस्याओं के पीछे के इंसानी दर्द को महसूस करें।
बिल्कुल, और इसी दर्द के बीच डू बॉयस उम्मीद और ताकत के स्रोतों की भी बात करते हैं, जैसे अध्याय 10 ऑफ द फेथ ऑफ द फादर्स, पुरखों के विश्वास पर, और अध्याय 14 द सोरो सॉन्ग्स, दुख भरे गीत, अश्वेत संस्कृति और आध्यात्मिकता की अहमियत को उजागर करते हैं।
हाँ, वो अश्वेत चर्च को सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं मानते, उसे समुदाय का दिल मानते हैं, एक सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र।
ये वो जगह थी जहाँ अश्वेत लोग आजादी से मिल सकते थे, संगठित हो सकते थे और अपनी पहचान को जी सकते थे। ये गुलामी के दौर से ही ताकत का एक बड़ा स्रोत रहा था।
और सोरो सॉन्ग्स, वो आध्यात्मिक गीत जिन्हें स्पिरिचुअल्स भी कहते हैं।
हाँ, जो गुलामी के भयानक दौर में पैदा हुए। डुबॉयज उन्हें सिर्फ लोक गीत नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि ये गीत अश्वेत आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति हैं। इनमें इतिहास छुपा है, दर्द है, संघर्ष है, लेकिन साथ ही अटूट विश्वास और मुक्ति की चाह भी है। डुबॉयज इन्हें अमेरिका की अकेली अनूठी कला मानते हैं, दुनिया को अश्वेत लोगों का एक अनमोल तोहफा।
ये सांस्कृतिक गौरव पर जोर देना भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है, और एक अध्याय है जो दिल को झकझोर लेता है, अध्याय 11 ऑफ द पासिंग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, पहले जन्मे के गुजर जाने पर।
हाँ, ये बहुत ही निजी और मार्मिक अध्याय है। इसमें डुबॉयज अपने नवजात बेटे की मौत के दुख को बयान करते हैं, लेकिन वो सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं है, वो इस बात पर भी सोचते हैं कि उनका बेटा इस नस्ल भेदी दुनिया की कड़वाहट और अपमान झेलने से
बच गया।
एक पिता के लिए सोचना कितना भयानक है।
ये दिखाता है कि नस्लवाद कैसे जीवन के सबसे पवित्र और निजी पलों में भी जहर घोल देता है।
हाँ, ये व्यक्तिगत त्रासदी दिखाती है कि नस्लवाद का जहर कितनी गहराई तक उतरता है।
इसी गहरे मानवीय अनुभव और सामाजिक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस किताब के मुख्य विषयों को समेटें तो क्या निकल कर आता है?
मेरे ख्याल से सबसे पहले तो वही दो बड़े विचार, दोहरी चेतना और पर्दा। ये हमें सिखाते हैं कि नस्लवाद सिर्फ बाहरी भेदभाव नहीं, ये इंसान की आत्मा पर, उसकी पहचान पर गहरा असर डालता है।
हाँ।
फिर रंग भेद की समस्या, द कलर लाइन, जिसे डू बॉयज ने 20वीं सदी की केंद्रीय वैश्विक चुनौती कहा, और ये कितनी सही भविष्यवाणी साबित हुई।
साथ ही वो समझौता परस्ती का विरोध और पूर्ण नागरिकता की मांग। उनका कहना था कि आर्थिक तरक्की जरूरी है, लेकिन मानवीय गरिमा, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक बराबरी के बिना वो अधूरी है,
और इसके लिए उच्च शिक्षा और बौद्धिक नेतृत्व, टैलेंटेड टेंथ की जरूरत है।
इसके अलावा आर्थिक शोषण का पर्दाफाश, कैसे गुलामी के बाद भी व्यवस्थाएं बदल कर शोषण जारी रखती है।
हाँ, और सांस्कृतिक पहचान का महत्व, अश्वेत चर्च और खासकर सोरो सॉन्ग्स के जरिए अपनी विरासत पर गर्व करना और उसे सहेजना।
और हाँ, नेतृत्व और नैतिक जिम्मेदारी का सवाल भी। जो लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिक्षा और अवसर मिले, उनकी अपने समुदाय के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ सोचते हुए भारत के संदर्भ में भी कुछ बातें जहन में आती हैं, जैसे हमारे समाज में भी जो सामाजिक विभाजन है, चाहे वो जाति, धर्म या किसी और आधार पर हो, वो कैसे लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक बोझ डाल सकते हैं, उन्हें अन्य या बाहरी महसूस करा सकते हैं।
हाँ, ये दोहरी चेतना वाली बात शायद कई हाशिए पर पड़े समूह महसूस करते होंगे, है ना?
सही कहा। या फिर अवसरों की कमी कैसे प्रतिभा को कुंठित कर देती है, जैसे डुबॉयज ने जोशी की कहानी में दिखाया। और अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं को बचाए रखने और उस पर गर्व करने का संघर्ष, ये भी शायद कई समुदायों के लिए एक जाना पहचाना अनुभव है।
हाँ, ये किताब हमें इन समानताओं पर सोचने को मजबूर करती है, बिना किसी सीधे राजनीतिक पक्ष लिए। और डुबॉयज की भाषा भी कमाल की है। कुछ वाक्य तो ऐसे हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और हमेशा के लिए याद रह जाते हैं।
हाँ, जैसे उनका ये मशहूर कथन, 20वीं सदी की समस्या रंगभेद की समस्या है।
बिल्कुल, 1903 में ये कहना वाकई दूरदर्शिता की निशानी थी। दुनिया भर में उपनिवेशवाद का दौर था और डुबॉयज देख रहे थे कि ये रंग के आधार पर विभाजन कितना गहरा और वैश्विक होने वाला है।
या फिर दोहरी चेतना का वो वर्णन, ये एक अजीब एहसास है, ये दोहरी चेतना, हमेशा खुद को दूसरों की नजरों से देखना, अपनी आत्मा को एक ऐसी दुनिया के पैमाने से मापना जो उपहास और दया से देखती है। व्यक्ति हमेशा अपने दोहरेपन को महसूस करता है, एक अमेरिकी, एक नीग्रो, दो आत्माएं, दो विचार।
हाँ, ये पंक्तियां उस अंदरूनी कश्मकश को इतने सटीक तरीके से पकड़ती हैं कि आज भी प्रासंगिक लगती हैं।
और उनका लक्ष्य क्या था, वो इस पंक्ति में साफ झलकता है। वो बस इतना संभव बनाना चाहता है कि एक आदमी नीग्रो और अमेरिकन दोनों हो सके।
बिना अपने साथियों द्वारा शापित और थूके हुए, बिना अवसर के दरवाजे उसके मुंह पर जोर से बंद किए हुए।
He simply wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an American.
मतलब अलग थलग होकर नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान के साथ समाज का हिस्सा बनकर अपनी दोहरी पहचान को जीना। ये एकीकरण का लक्ष्य था, अलगाव का नहीं।
हाँ, तो ये विचार जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं आज हमारे लिए कैसे मायने रखते हैं? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं?
मेरे विचार में ये हमें व्यवस्थागत मुद्दों सिस्टमैटिक इश्यूज और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों इंडिविजुअल प्रेजुडिसेस के बीच का फर्क समझने में मदद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भेदभाव बस कुछ बुरे लोगों की सोच है, लेकिन डुबॉइस दिखाते हैं कि ये कैसे पूरे सिस्टम में, कानूनों में, संस्थाओं में रचा बसा हो सकता है। बिल्कुल, आज जब दफ्तरों में या समाज में विविधता और समावेशन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात होती है तो ये किताब याद दिलाती है कि सिर्फ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को नौकरी दे देना या उन्हें एक कमरे में बिठा देना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या वो लोग वहां सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो अपनी पूरी पहचान के साथ बिना कुछ छुपाए वहां रह सकते हैं? क्या उन्हें वो पर्दा महसूस होता है?
और ये कोड स्विचिंग वाली बात भी इसी से जुड़ती है ना, यानी अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच फिट होने के लिए अपनी भाषा, लहजा या व्यवहार बदलना।
हाँ हाँ,
कई अल्पसंख्यक या हाशिए पर पड़े समूहों के लोग अक्सर ऐसा करते हैं। ये कहीं ना कहीं उसी दोहरी चेतना का एक आधुनिक रूप लगता है, अपनी असल पहचान और समाज की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश।
हाँ, और शिक्षा के उद्देश्य पर भी ये किताब सोचने पर मजबूर करती है। क्या शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी के लिए कुशल कामगार तैयार करना है, जैसा शायद वॉशिंगटन का नजरिया ज्यादा जोर देता था? या फिर इसका उद्देश्य व्यक्ति का समग्र बौद्धिक, नैतिक और आलोचनात्मक विकास करना है, ताकि वो समाज का एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके, जैसा डुबॉइस चाहते थे? ये बहस तो आज भी जारी है।
बिल्कुल, और नेतृत्व की जिम्मेदारी वाली बात भी, खासकर उन समुदायों में जो ऐतिहासिक रूप से पीछे छोड़ दिए गए हैं। वहां जो लोग आगे बढ़ते हैं उनकी अपने समुदाय के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए?
हाँ, ये अहम सवाल है।
क्या उन्हें सिर्फ अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए या समुदाय को ऊपर उठाने में भी मदद करनी चाहिए? डुबॉइस का टैलेंटेड टेंथ का विचार इसी नैतिक जिम्मेदारी पर जोर देता है।
अंततः ये किताब हमें किसी भी तरह के अन्यीकरण, यानी किसी समूहों को बाहरी या अलग समझने के मनोवैज्ञानिक असर को समझने में मदद करती है। ये सिर्फ नस्ल तक सीमित नहीं है।
सही,
ये अनुभव किसी भी उस समूह का हो सकता है जिसे समाज हाशिए पर रखता है। ये नस्लीय या जातीय आघात, रेशियल एथनिक ट्रॉमा और मानसिक स्वास्थ्य पर आज जो बातचीत हो रही है उसके लिए भी एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक और सैद्धांतिक आधार देती है।
वाकई, इस किताब में बहुत कुछ है सोचने और समझने के लिए। अगर इस पूरी चर्चा से एक सबसे अहम सबक निकालना हो तो आपके लिए वो क्या होगा?
मेरे लिए शायद सबसे स्थायी सबक दोहरी चेतना का विचार ही है। ये समझना कि उत्पीड़न सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाल सकता है, इंसान के आत्मसम्मान को कैसे तोड़ सकता है। और दूसरा, डुबॉइस का अपना जीवन, एक गहरे विद्वान और एक जोशीले कार्यकर्ता का संगम। वो दिखाते हैं कि ज्ञान और कर्म कैसे मिलकर बदलाव ला सकते हैं।
हाँ,
ये किताब चीख चीख कर कहती है कि नस्लवाद या कोई भी सामाजिक अन्याय सिर्फ नीति या अर्थव्यवस्था का मसला नहीं, ये आत्मा का मसला है।
और मुझे व्यक्तिगत रूप से सौरो सॉन्ग्स पर उनका लेखन बहुत पसंद आया। जिस तरह उन्होंने उन गीतों में छिपी गहराई, इतिहास और मानवीय भावना को उजागर किया, वो कमाल का है।
हाँ, वो बहुत सुंदर है।
उन्होंने दिखाया कि जिन लोगों को समाज ने दबाया उनकी संस्कृति में भी कितनी ताकत और सुंदरता हो सकती है। चलिए, अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो इसी किताब के विचारों से जुड़ा है। डुबॉइस ने उस पर्दे की बात की जो समाज को बांटता है और लोगों को एक दूसरे की पूरी इंसानियत देखने से रोकता है। आज हमारे अपने समाज में हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य पर्दे मौजूद हैं और उन्हें हटाने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर हम क्या कदम उठा सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।